नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी बांध विस्थापितों को शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने नंदा देवी राजजाति यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबे समय से भूमिधरी अधिकार की मांग कर रहे टिहरी बांध विस्थापितों को आश्वस्त किया कि इस मामले में और विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध परियोजना से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री आवास में टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र संघर्ष समिति पथरी हरिद्वार और ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर बहादुराबाद के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने भूमिधरी अधिकार और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। श्री धामी ने मौके पर हरिद्वार और टिहरी के जिलाधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की और वैधानिक व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि विस्थापित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके। सांसद अजय भट्ट ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना को ऐतिहासिक, क्रांतिकारी और लोक कल्याण की दिशा में मील का पत्थर बताया है। वे हल्द्वानी में VBG रामजी पर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों मजदूरों के लिए समर्पित व प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। श्री भट्ट ने कहा कि VBG रामजी योजना के नाम पर कांग्रेस जनता में भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि इस नए अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि होगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने नगर निगम क्षेत्र BHEL टाउनशिप सिडकुल और शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि जिले को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए 1 माह 21 दिन से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने BHEL के अधिकारियों से अपेक्षा की है कि BHEL टाउनशिप सिडकुल और शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत सफाई व्यवस्था में पूरा सहयोग दें। साथ ही BHEL क्षेत्र के तहत जिन स्थानों से कूड़ा कचरा डंप किया गया है उन स्थानों को साफ करने और अतिक्रमण तत्काल हटाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा फेंकने वालों के चालान करने के लिए भी निर्देशित किया।
अभी हमारे पूरे जनपद में जो स्वच्छता सफाई अभियान चल रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में आज BHEL के उच्च अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी और इसमें साथ ही शिवालिक नगर और सिडकुल के जो एरियाज हैं लगे हुए वहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यूज है और साथ ही डंपिंग के इश्यूज भी टाइम टाइम पर जो आते हैं, जबकि शिवालिक नगर नगर पालिका के और आसपास के जो गांव है जैसे रावली मेहदूर सलीमपुर आदि के जो वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज है उसको लेकर एक बैठक की गई जिसमें की डायरेक्शन दिए गए हैं। विभिन्न डायरेक्शन है जिसमें अतिक्रमण जो है टिपरी के आसपास और साथ ही सिडकुल और जो हमारे नगर निगम की जमीनें हैं उस पर, साथ ही शिवालिक नगर नगर पालिका के एरियाज में जो अतिक्रमण है उसको लेकर और साथ ही जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वहां पर नालों की सफाई और कचरा प्रबंधन और साथ ही जो लोग बार बार सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डाल रहे हैं उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने के लिए भी डायरेक्शन दिए गए।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता आज उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उन्हें दोपहर करीब 2 बजे देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 जनवरी को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई थी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने इस साल होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने पेयजल, बिजली, यातायात, पैदल मार्ग, हेलीपैड निर्माण और यात्री सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वीकृत कार्यों पर शीघ्र निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
जिलाधिकारी ने देवाल वाण मार्ग पर वाहनों के सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने, वाण सड़क पर चल रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक सुधार करने और प्रस्तावित हेलीपैड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। यात्रा मार्ग पर पेयजल व्यवस्था को समय पर पूरा करने के लिए जल संस्थान और वन विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया। साथ ही निर्जन पड़ाव पर पड़ाव अधिकारी की नियुक्ति और विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बेदनी सहित अन्य निर्जन पड़ाव पर सोलर प्लांट लगाने की संभावनाओं पर योजना तैयार करने को कहा गया। बैठक में यात्रा के दौरान वाहन पार्किंग की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। वाण, लाटू धाम, नंदकेसरी और अन्य पड़ावों के समीप वैकल्पिक पार्किंग के लिए भूमि चयन के निर्देश दिए गए। पर्यटन विभाग को निर्जन पड़ावों पर आवास व्यवस्था को लेकर आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने को कहा गया। आकाशवाणी देहरादून के समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
उधम सिंह नगर जिले के तराई बीज विकास निगम मैदान खटीमा में कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वावधान में 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू हो गया है। उत्तरायणी कौतिक में कुमाऊनी और गढ़वाली संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा जहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं लोक गायकों की सजीव प्रस्तुतियों पर ढोल, दमाऊं, हुड़का और रंगसिंह की थाप ने माहौल को जीवंत बना दिया है। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लोक संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम की सांस्कृतिक प्रभारी सावित्री चंद ने बताया कि हमारे बच्चे अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को भूलते जा रहे थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपनी विरासत और संस्कृति के प्रति जागरूक करना है।
पहाड़ों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। वहाँ की बोली, भाषा, हमारे जो कार्यक्रम, और इस मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे लोग छलिया नृत्य भूल गए थे, तो उसकी वजह से हमारे जो छलिया के जो कलाकार हैं उनको भी रोजगार मिला और हम अपनी संस्कृति को अपने बच्चों तक जाए, आगे आने वाली पीढ़ी भी उस बात को समझे कि हमारी कितनी रिच धरोहर है हमारी।
हल्द्वानी शहर के प्रमुख बाजारों में लगातार बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। बार बार चेतावनी और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बावजूद व्यापारियों द्वारा सड़कों और फुटपाथों पर कब्जा किए जाने से आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए सिटी मैजिस्ट्रेट के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने मीरा मार्ग सहित सदर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क पर दुकान का सामान फैलाकर आवागमन बाधित कर रही व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया गया। राज्य कर विभाग के हल्द्वानी संभाग में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह दिसंबर माह में 31 करोड़ 90 लाख रुपए रहा। हल्द्वानी संभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राज्य कर रोशन लाल ने बताया कि जीएसटी संग्रह में कुल 23,928 पंजीकृत डीलरों वाले नैनीताल जिले ने सर्वाधिक 24 करोड़ 78 लाख रुपए का योगदान किया है। वहीं वर्ष 2024 के दिसंबर माह की तुलना में सबसे कम पंजीकृत डीलरों वाले बागेश्वर जिले से इस बार 27% से अधिक की वृद्धि के साथ 91 लाख रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी बांध विस्थापितों को शीघ्र राहत देने का आश्वासन दिया। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में 7 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।